श्रोताओं, कार्यक्रम अल्लाह के खास बंदे में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के आचरण पर आज हम चर्चा करेंगे। मरियम मेहर दादी और सैयद मिसम का सलाम स्वीकार कीजिए।
श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम में हमने इस बात का उल्लेख किया था कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने अब्बासी शासक मंसूर दवानिकी के हाथों क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी, उन्हें कैद व कत्ल करने तथा लूटमार के कारण अपने पिता इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जीवन में ही सांस्कृतिक आंदोलन के संबंध में अहम कदम उठाया था। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने भी अपने पिता की ही तरह सांस्कृतिक काम को राजनीतिक काम पर वरीयता दी और इस तरह मंसूर अब्बासी के घुटन भरे 10 साल के दौर को बड़ी समझदारी से गुजारा। मंसूर 158 हिजरी कमरी में मरा और हुकूमत की बागडोर उसके बेटे मेहदी अब्बासी के हाथ में पहुंची। उसने ढोंग की आड़ में और जनमत को धोखा देने के लिए उन सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जिन्हें उसके पिता ने कैद किया था, जिनमें ज्यादातर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के अनुयायी थे। इसी तरह इन राजनीतिक कैदियों की हड़पी गई संपत्ति भी उन्हें लौटा दी गई और उनमें से बहुत कम लोगों को कैद में रखा।
महदी अब्बासी ने विदित रूप से अच्छे नज़र आने वाले इस व्यवहार की आड़ में अपने जासूसों को यह आदेश दिया कि वे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की तमाम गतिविधियों पर नज़र रखें। महदी अब्बासी ने दूसरे अत्याचारी अब्बासी शासकों की तरह शुद्ध इस्लामी शिक्षाओं को ख़राब करने और पैगंबर इस्लाम के पौत्र इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की छवि बिगाड़ने की कोशिश की। महदी अब्बासी अपने शैतानी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन शायरों को बहुत पैसा देता था जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की संतान की बुराई में शेर कहते थे। इस लक्ष्य के तहत उसने इस तरह के शायरों में से एक बशार बिन बुरत को 70,000 दिरहम और मरवान बिन अबी हफ्सा को 1,00,000 दिरहम दिए। इसके अलावा महदी अब्बासी राज कोश को बुरी तरह लुटाता, शराब पीता और अय्याशी करता था, जैसा कि उसने अपने बेटे की शादी पर 5 करोड़ दिरहम खर्च किए।
इस तरह से अब्बासी शासकों का असली चेहरा जाहिर हो गया। उनके नारों का खोखलापन स्पष्ट हो गया, लोगों के मन में नफरत बढ़ गई और इसके विपरीत लोगों के बीच इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। महदी अब्बासी की अपेक्षा के विपरीत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शोहरत हर जगह फैल गई। लोग गुटों में गुप्त रूप से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पास आते और उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व से अपनी आध्यात्मिक प्यास को बुझाते। इस बात से महदी अब्बासी डर गया और उसने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को मदीने से बगदाद आने का आदेश दिया और जेल में डलवा दिया। लेकिन मौत के चंगुल ने महदी अब्बासी को धर दबोचा और 169 हिजरी कमरी में वो इस दुनिया से चल बसा। उसके बाद उसका बेटा हादी अब्बासी सत्ता में पहुंचा। हादी ने अपने शासन के आरंभ से ही कठोर नीति अपनाई। वो बिना किसी झिझक के हजरत अली अलैहिस्सलाम के वंशजों पर कड़ाई करता और उनके माल को हड़प लेता। उसने अपने कर्मपत्र को फख नामक त्रासदीपूर्ण घटना से कलंकित किया।
फख घटना इमाम हसन अलैहिस्सलाम के वंश से हुसैन बिन अली के नेतृत्व में अब्बासियों के खिलाफ बगावत थी जो मदीना से शुरू हुई। इस घटना में मक्का के निकट फख नामक स्थान पर हुसैन बिन अली अपने ज़्यादातर साथियों के साथ शहीद हुए। इस त्रासदी में करबला की त्रासदी की तरह सभी शहीदों के सिर उनके शरीर से अलग किए गए और उस सभा में सिरों को रखा गया जिसमें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम सहित इमाम अली अलैहिस्सलाम के वंशज मौजूद थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने जब विद्रोह के नेता हुसैन बिन अली के सिर को देखा तो कहा, इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊन। ईश्वर की सौगंध, हुसैन इस हालत में शहीद किए गए कि वे मुसलमान और ईमानदार थे, बहुत रोज़ा रखते, रात में जाकर उपासना करते, लोगों को भलाई का निमंत्रण देते और बुराई से रोकते थे। ان کے پریوار میں ان کے جیسا کوئی نہ تھا۔ فخر شہیدوں کے مزار کے اوشیش کو انیک بار وہاں بھی دھوست کر چکے ہیں۔
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اس اسپشٹ درشی کون سے یہ اسپشٹ ہو گیا کہ وہ ودروہ امام کے سمنوے سے ہوا ہے، جس سے ہادی عباسی کرودھت ہو اٹھا اور اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی اور کہا، ایشور کی سوگند، فخ آندولن کے نیتا حسین نے موسیٰ بن جعفر کے آدیش سے میرے خلاف ودروہ کیا، ان کا پالن کیا ہے کیونکہ ان کے پریوار کا امام موسیٰ بن جعفر کے سوا کوئی اور نہیں ہے، ایشور مجھے مار ڈالے اگر میں انہیں جیوت رہنے دوں۔ اس دھمکی کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر تنک بھی اثر نہ ہوا، لیکن ان کے آس پاس کے لوگ خطرہ محسوس کرنے لگے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہادی عباسی اپنی سازش میں کامیاب ہوتا، موت کے چنگل نے اس کی بھی گردن دھر دبوچی اور وہ بھی اس دنیا سے چل بسا، اور مدینے میں لوگوں نے خوشیاں منائیں۔
ہادی کے بعد اس کا بھائی ہارون ستہ میں پہنچا۔ ہارون کا شاسن شروع ہوتے ہی اسلامی اتہاس میں خطرناک گھٹنائیں جڑ گئیں۔ اس نے 23 سال شاسن کیا، جس میں اس کے شاسن کال کے 15 سال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے دوران رہے۔ اس دوران بہت سے ایسی گھٹنائیں گھٹی جن کی ویاکھیا سے ہارون کی حکومت کا اصلی چہرہ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا درشٹی کون اسپشٹ ہو جاتا ہے۔ جس سمے ہارون شاسک بنا تو اس کی عمر 23 سال تھی، اور اس سمے عباسی شاسن کا دائرہ پھیل کر 40 راجیوں تک پہنچ گیا تھا۔ ان بڑے راجیوں میں ایک ایران اور دوسرا مصر تھا۔ کم عمر ہونے، پرشاسنک و راجنیتک انوبھو نہ ہونے تتھا کم عمر میں وشال اسلامی جگت کی ستہ ملنے کی وجہ سے ہارون میں گھمنڈ پیدا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن اسی گھمنڈ میں چور وہ لیٹا ہوا تھا کہ اس نے بادل کے ایک ٹکڑے کو گزرتے ہوئے دیکھا تو کہا، جہاں بھی جا تیرا ٹیکس میرے ہی پاس آئے گا۔
ہارون بھی دوسرے طاقتور لوگوں کی طرح تعریف و چاپلوسی کا بھوکا تھا۔ ہارون نے اشج سلیمی نامک شاعر کو اپنی تعریف میں ایک قصیدہ کہنے پر 10 لاکھ درہم دیے۔ اسی طرح ابراہیم موسلی نامک گائک و سنگیتکار کو کسی ساز کے بجانے اور گانے پر 1 لاکھ درہم اور 100 مہنگے وستر دیے۔ اس کے علاوہ ہارون کے محل میں گانے و بجانے والی مہیلاؤں کے بہت سے گٹ رہتے اور نانا پرکار کے وادی یانتر موجود رہتے تھے۔ ہارون کو رتن بہت پسند تھے۔ ایک بار اس نے ایک انگوٹھی خریدنے کے لیے 1 لاکھ دینار خرچ کیے۔
بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہارون سہیت عباسی شاسن کے سبھی ادنڈی شاسکوں نے، جو خود کو پیغمبر اسلام کا اترادھیکاری سمجھتے تھے، 500 سال سے زیادہ سمے تک اسلامی راجیوں پر شاسن کیا، لیکن ان کے ویکتتو میں پیغمبر اسلام کے آچرن کا تنک بھی اثر نہ تھا، بلکہ سبھی دھارمک و مانوی مولیہ ان شاسکوں کے برے لکشوں کی بلی چڑھ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ شیعوں کے امام ان خلافت کے ہڑپنے والوں کے مقابلے میں خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ جیون کے انتم کھن تک سنگھرش کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بغداد میں ہارون کے ایک بہت ہی سندر محل میں داخل ہوئے۔ ہارون نے، جو ستہ کے نشے میں چور تھا، اپنے محل کی اور اشارہ کرتے ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ اس محل کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے۔ امام نے صاف شبدوں میں کہا، یہ بھرشٹ لوگوں کا گھر ہے جن کے بارے میں ایشور نے فرمایا ہے، جو لوگ زمین پر خود کو بڑا سمجھتے اور گھمنڈ کرتے ہیں، اگر ایشور کی کسی نشانی کو دیکھتے ہیں تو ایمان نہیں لاتے، صحیح راستے کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے، اور اگر برائی کے راستے کو دیکھتے ہیں تو اسی کا چین کرتے ہیں۔ ہم اس گٹ کو اپنے مارگ درشن سے ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے میری نشانیوں کو جھٹلایا اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
हारून, जिसे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी, नाराज हो गया और उसने पूछा, तो फिर इस घर पर किसका अधिकार है? इमाम ने फरमाया, अगर सच को जानना चाहते हो तो ये हमारे चाहने वाले शियों और अनुयायियों का है, लेकिन दूसरों ने ताकत और धोखे से इसे हत्या लिया है। हारून ने चिढ़कर कहा, तो फिर घर का मालिक इसे हमसे वापस क्यों नहीं लेता? इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बात में शक नहीं कि जब उसका वक्त आएगा तो उसे वापस ले लिया जाएगा।
इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का इशारा हारून के महल को लेने की ओर न था, बल्कि इमाम का इशारा खिलाफत की बागडोर की ओर था, जिसे हड़पने वालों ने हजारों तरह की दुर्दतापूर्ण चालों से हत्याया था।
हारून और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बीच जो शास्त्रार्थ हुआ और जिसे अबुल कासिम जमखशरी ने, जो सुन्नी समुदाय के कुरान के बहुत बड़े व्याख्याकार हैं, बयान किया है, उससे ये दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। एक दिन हारून ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से कहा, आप हमें फिदक नामक इलाके का क्षेत्रफल बताइए ताकि हम उसे आपको लौटा दें। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, छोड़ो इस बात को। हारून ने फिर आग्रह किया तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं फिदक का क्षेत्रफल बता दूं तो तुम उसे नहीं दोगे। हारून ने कसम खाकर कहा कि उसे आपको लौटा दूंगा। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसकी पहली सीमा अधन तक है। ये सुनते ही हारून के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन इसके बाद भी उसने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से कहा, उसके बाद की सीमा कौन सी है? तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसकी दूसरी सीमा समरकंद है। ये सुनकर हारून बहुत नाराज हुआ। इमाम ने फिर फरमाया, एक और सीमा अफ्रीका है। हारून पूरी तरह लाजवाब हो चुका था कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसकी एक और सीमा आर्मेनिया और खजर है। ये सुनकर हारून बेकाबू हो गया और क्रोधित होकर कहने लगा कि तो आइए हमारी जगह पर बैठ जाइए, क्योंकि जो सीमा आपने बताई है उससे तो हमारे लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने तो पहले ही तुमसे कह दिया था कि अगर फिदक की हद बता दूं तो तुम उसे नहीं लौटाओगे।
इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का ये दृष्टिकोण उनके पवित्र पूर्वजों के दृढ़तापूर्ण नज़रिए का ही क्रम था, जैसा कि छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने मंसूर के सामने और पांचवें इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने अब्दुल मलिक बिन मरवान के सामने और चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हेशम बिन अब्दुल मलिक के सामने पूरी तरह दृढ़ता दिखाई और उनकी धूर्ततापूर्ण चालों के खिलाफ डट गए और उनकी झूठी शान को बेनकाब कर दिया।